आयत 32 शुरू करनी है। थोड़ा सा इससे पहले खुलासा लीजिएगा। जैसा कि शुरू में बात हुई थी कि किसी भी सोसाइटी में दो बड़े मसाइल होते हैं। पहले मसले को हमने देख लिया और वो क्या है कि गुनाहों का मसला है। आप कहें कि गुनाह मसला कैसे बनते हैं? मसला इसलिए होता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि तुम पे जो भी मुश्किल आती है तुम्हारे गुनाहों की सज़ा होती है। तो जब भी किसी सोसाइटी में आफात आती हैं, मसाइब आते हैं, तो उसके पीछे लोगों के गुनाह होते हैं। उसकी दो किस्में देखी। अब दूसरा बड़ा मसला जो किसी भी सोसाइटी में आपको दिखेगा वो क्या है कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं। हम किसी मुआशरे में देखें, अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ तरह से बनाया है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई खूबसूरत है, कोई वाजबी शक्ल का है, कोई सही सालम है, कोई हैंडीकैप है, जैसे आप कहें कि नाक़सुल अज़ा है। तो ये फ़र्क देखकर बाज़ दफ़ा कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा फिर अगर अल्लाह है तो फिर उसने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया। अच्छा अब होता क्या है कि जब हम दूसरों को देखते हैं तो उसके बारे में हमारे अपने जहन में सवाल आते हैं। कभी हम अपने आप से तकाबुल करते हैं, हाय मैं तो उधर भी नहीं अच्छी, मेरी दोस्त इतनी खूबसूरत है, मैं ऐसी हूँ, उसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, उसके शौहर उससे मोहब्बत करते हैं, मेरे नहीं करते। तो दुनिया में ये इशू हमेशा रहेगा कि लोग मुख्तलिफ किस्म के हालात का शिकार होंगे। अल्लाह सुब्हान तआला की हिकमत इसमें क्या थी कि लोगों को मौका दिया जाए सब्र और शुक्र का। दूसरे को अपने से अच्छे हाल में देखें तो सब्र कर लें, अपने आप को अच्छे हाल में दूसरों से देख लें तो शुक्र कर लें, और दोनों इम्तिहान के पर्चे हैं। असल मकसद ये नहीं था कि हम दुनिया में एक दूसरे से अपने तकाबुल करें, बल्कि हम सब दुनिया में आए थे जन्नत की तैयारी के लिए, नेकी और खैर के कामों में आगे बढ़ना है। तो यहाँ अगली आयत में बहुत ही खूबसूरत सल्यूशन दिया गया कि जो चीज़ें तुम बदल नहीं सकते उसका गम क्यों मनाते हो, जो काम कर सकते हो तुम उसमें आगे निकल जाओ। बस आप में से हर एक डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन हम में से हर एक अच्छी माँ तो बन सकता है, तो वो बन जाओ। कभी ऐसा नहीं, कभी वैसा नहीं। और बाज़ दफ़ा तो ये तक लोगों का तकाबुल होता है कि अल्लाह ने मुझे औरत क्यों बनाया, कोई कहता है मुझे मर्द क्यों बनाया। इस तरह एक खूबसूरत सा मैदान खोला जा रहा है कि मनफी सोचों को छोड़ो, नेगेटिविटी को छोड़ो, पॉजिटिव बन जाओ, मुस्बत सोचों में चलो, एहसास कमतरी से निकलो और अपने आप को न्यूट्रल रखो। कुड़ने की बजाय, जहनी बीमार होने की बजाय, उलझनों और महरूमियों का और नाकामियों का एहसास पैदा करने की बजाय तुम क्या करो, आयत 32 अब देखिएगा। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, और तमन्ना न किया करो उस शय की जिसके जरिए से अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी। यानी जिसको जिस तरह से भी रखा है अल्लाह ताला ने उसको उस पर खुश रहना चाहिए। किसी की खिल्क अच्छी है, किसी का अखलाक अच्छा है, किसी की जहनी सलाहियत अच्छी है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो दुनिया का असूल है। आप देखिए कि मिसाल सिर्फ खाने से ले लीजिए, रोटी और सालन। रोटी फीकी होती है, गोल होती है, सफ़ेद होती है। अगर बिल्कुल रोटी ही जैसा सालन भी सामने रख दिया जाए तो क्या आपको मुझे मज़ा आएगा? रोटी रोटी है, सालन सालन है, मीठा क्यों मांगते हैं खाने के बाद? क्योंकि वो नमकीन था, अब आपको मीठा चाहिए, है ना? तो इसी तरह दुनिया में काम चलाने के लिए अल्लाह ने सबको फ़र्क रखा। अगर सब मर्द होते, औरतें ना होती तो नस्ल कैसे चलती? सेम यही चीज़ है, अगर सारी औरतें ही होती, मर्द ना होते, नस्ल कैसे चलती? सब अमीर होते तो दुनिया में छोटे छोटे काम कोई कैसे करता? वो कहते हैं ना, तू भी रानी मैं भी रानी तो कौन भरेगा पानी। अमीर लोग ना होते तो गरीबों की ज़रूरियात कौन पूरी करता, और गरीब ना होते तो छोटे छोटे काम, सफाई सुथराई के, गटर साफ करना, सड़कों को साफ करना, ये कौन करता? वो थोड़े से पैसों पे राजी हो जाते हैं। बड़े बड़े अफसर बड़ी तनख्वाहों पे वो राजी नहीं होते जो छोटे काम करने वाले हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह का हुक्म है। रह गई बात मर्द और औरत की फ़र्क की, और यहाँ इस आयत में इक्वेलिटी को भी सामने रखिएगा। क्या कहा? लिर रिजाली नसीबु मिम्मक तसबु, मर्दों के लिए हिस्सा है इसमें से जो वो कमाएंगे। वलिन निसाई नसीबु मिम्मक तसबना, मिम्मक तसबना, और औरतों के लिए हिस्सा है इसमें जो वो कमाएंगी। यहाँ आप देखिए कसब का लफ्ज़ है, आम तौर पे जो कसब है ये दुनिया के माल के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे आखरत की बात है कि तुम मर्द तो नहीं बन सकती, लेकिन नेकियां करके तुम मर्दों के बराबर तो हो सकती हो। इसके भी शाने नज़ूल का वाक़या सुनाऊंगी तो आपको आयत का ये हिस्सा समझ आएगा। यहाँ इक्वालिटी का एक खूबसूरत नुक्ता नज़र दिया कि नेकियों के मामले में औरत मर्द बराबर है, आगे बढ़ने के मामले औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं, मर्द और जन में बिल्कुल मसावात है। मर्द नेकियां करेगा उसको अजर मिलेगा, औरत नेकियां करेगी उसको अजर मिलेगा। औरत मर्द से आगे बढ़ जाएगी तो औरत का दर्जा आगे जन्नत में ज़्यादा होगा, मर्द करेगा ज़्यादा नेकी तो औरत से बढ़ जाएगा। मर्दों में बहुत सारे मर्द हैं, लेकिन क़यामत के दिन हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा और हज़रत फातिमा के मुकाम पर वो रश करेंगे, क्योंकि वो तो उनकी खाक तक नहीं पहुंच सके। तो एक इंसान को करना क्या है? राज़ी व रज़ा, तस्लीम व रज़ा, रदी तो बिल्लाही रब्बन, जो बनाया जैसा बनाया खूब बनाया। याद रखिए, ज़िंदगी में खुशियाँ आती ही उस शख्स के हिस्से में हैं जो कहता है कि मेरे रब, जो तूने मेरे साथ किया है वो बिल्कुल ठीक किया, जो किया खूब किया, जो मेरे साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, जो दिया बिल्कुल दिया, जो नहीं दिया उस पर भी शुक्र, जो दिया उस पर भी शुक्र, जो दे कर ले लिया उस पर और भी शुक्र, जो मैंने मांगा वो मेरी ख्वाहिश थी, जो तूने किया मेरे साथ वो तेरी ख्वाहिश थी, तो मैं अपनी ख्वाहिश पे तेरी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि गना दिल का होता है, और आज के दौर में सबसे ज़्यादा दौलतमंद वो शख्स है जो अपनी मौजूदा हालत पर राज़ी है। और मैं बदगुमानी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने ऐसे दौलतमंद बहुत थोड़े देखे। करोड़पति लोग भी खुद पर रहम ही खाते हुए देखे गए, और बाज़ ऐसे हैं कि शाम के खाने के लिए भी कुछ है कि नहीं है, लेकिन वो कहते हैं बहुत खूब है। तो दिल का बादशाह बने, दिल की गनात, दिल को अपने बड़ा रखें, आप देखेंगे कि आप खुश हैं। बस अगर अल्लाह ने आपको सिर्फ बेटे दिए, बेटी नहीं दी, आप खुश हैं, तो बस अब अच्छा है। बेटी दे दी, सिर्फ बेटा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सब दे दिए, खुश हैं। और सब कुछ हो और बंदा अपनी मौजूदा हालत पर राज़ी ना हो, वो बंदा कभी खुश नहीं होता। और याद रखिए, ये नाशुक्री का रवैया होता है। ऐसा मामला जिसको मैं और आप बदल ही नहीं सकते, उस पर कुड़ने से क्या होगा। मसलन मैं और आप सारी रात भी रोते रहे ना कि मेरा कद 3 इंच लंबा हो जाए, तो क्या मुझे इस रोने से फ़ायदा होगा? हाँ, मैं और आप रात को इस गम में रो लें कि अल्लाह जन्नत में मेरा कद खूबसूरत कर दे, मेरा रंग गोरा कर दे, तो ये मुमकिन है कि नहीं? ये मुमकिन है, अगर उसी चीज़ को उधर लेना। तो याद रखिए, जो चीज़ें यहाँ ना मिलें वो वहाँ ले लें, रिप्लेस करें। ख्वाहिशात को, तमन्नाओं को अल्लाह की मर्ज़ी के आगे झुका दीजिए, आप देखेंगे कि ऐसा बंदा खुश होता है। तो फरमाए, तकाबल ना करो, बराबरियाँ ना करो, मुकाबले ना करो, अपने नंदों से मुकाबले ना करो, दोस्तों से मुकाबले ना करो, साथियों से मुकाबले ना करो। हर बंदे को अल्लाह ने एक काम के लिए दुनिया में पैदा किया, वो करे और चलता जाए। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह बनी इसराइल आयत 84 में आएगा, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, कह दीजिए कि हर एक अपने तरीके पे काम कर रहा है। शाकिला जैसे शक्ल है ना, हर एक एक अपना स्टाइल होता है। इसी तरह सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं आयत 286 में कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा नहीं आज़माता। तो मेरी जो वुसअत है अल्लाह मुझसे उतना ही पूछेगा। अब इस एक आयत को देखिए कि जिस टेक्स्ट में हम समझ रहे हैं अभी तक, इसमें साफ समझ आ रहा है ना कि ये आखिरत की दौड़ है, उधर चलो। लेकिन कुछ लोगों ने इस आयत में से कसबू के लफ्ज़ से ये दलील निकाली कि औरतें भी माल कमा सकती हैं। तो समझें कि कुरान पाक में सिर्फ एक मुकाम सूरत बकरा 267 है जहां कसब का लफ्ज़ मुआशी जिद्दोजहद के लिए आता है, मुआशी कमाई के लिए आता है। वो क्या है आयत? अनफिकू मिन तैयबाती मा कसबतुम। मैंने आपको वहां भी ये बात लिखाई थी कि ये वाहिद मुकाम है जहां कसब से दुनियावी कमाई यानी अर्निंग मुराद है, बाकी हमेशा कसब का लफ्ज जहां भी आएगा ना कुरान में, ये आखरत की कमाई है। कसब हसनात नेकियां कमाना और कसब सय्यात बदियां कमाना। अब अगर आप इस आयत पे जरा सा गौर करें तो लिर रिजाली नसीबो मिमकतसबू, मर्दों के लिए हिस्सा है इसमें से जो उन्होंने कमाया, वलिन निसाई नसीबो मिमकतसबना, और औरतों के लिए हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। तो क्या एक औरत की तनख्वाह अगर 10,000 है तो क्या उसको 5,000 मिलेंगे? नहीं, उसको पूरी तनख्वाह मिलेगी ना। लिहाजा आयत में कसब का इत्तलाक दुनिया की कमाई पे नहीं है। एक औरत मुलाजमत करती है उसको भी उतने पैसे मिलते हैं, मर्द करता है उसको भी है। अगर एक औरत अच्छी जॉब कर रही है जहां उसका घर नहीं मुतासिर हो रहा, उसकी इज्जत नहीं खराब होती, कोई हराम चीज नहीं है 70 और हिजाब के अदाब में, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कमाई कर ले वो जितना भी करे, अल्लाह उसके लिए कर देगा। लेकिन इससे ये नहीं मुराद कि अब एक औरत के कंधे पर भी आप वही तलवार रख दें जो मर्द की, और वो कह के कमा के लाओगी तो खाना मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। और इसमें एक और चीज़ भी समझ आती है कि जिसने जितना कमाया, यानी आमाल के मुख्तलिफ मर्तबे होते हैं, किसी की नीयत बड़ी अच्छी होती है, कोई बड़ा बाअदब होता है, कोई काम को करता बड़े खूबसूरत तरीके से है, तो क़यामत के दिन सेम अमल करने वाले लोग भी मुख्तलिफ दर्जों में होंगे, ये भी मुराद है। सूरह बकरा में हज का जिक्र जब आया था तो क्या पढ़ा था आपने आयत 202 में, उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, यही वो लोग हैं जो उन्होंने कमाया होगा, इनको हिस्सा मिलेगा। तो सारी बात का खुलासा मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया है कि दुनिया में कुछ आप मैं फ़र्क तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे आपको दिया है उसको कबूल ज़रूर कर सकते हैं। और साथ ही कह दिया वसलुल्लाह मिन फदली ही, अल्लाह का फजल तलब किया करो, अल्लाह से फजल मांगो। अब छोड़ो शक्ल सूरत और अपनी जिंस को क्या होना था क्या बनना था, जो अल्लाह ने दे दिया अब ये कहो कि अल्लाह ताला आगे मेरे लिए फजल हो, मेरे मामले दुरुस्त कर दे, हिम्मत दे, मैं दुनिया में कामयाब होके जाऊँ, मुझे माँ होने के नाते कामयाब कर दे, बीवी होने के नाते, इसी तरह से हर मामले में मेरी ज़िंदगी में सुकून दे दे। और साथ ही कह दिया कि इन्नल्लाह कान बिकुल्ली शयइन अलीमा, यकीनन अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानते हैं। खुलासा क्या हुआ इस पूरी बात का, मैं दोहरा देती हूँ इस बात को, शाने नजूल सुनिएगा इस आयत की। तिर्मिज़ी और हाकिम में है कि हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है, कहने लगी कि मर्द जिहाद करते हैं और हम जिहाद नहीं कर सकते। ज़रा नोट करिए उस दौर की औरतों की इक्वलिटी की ख्वाहिश क्या थी, कि हम भी वो नेकियां करें जो मर्द करते हैं। आज की औरतों के मुतालबे क्या हैं अमूमन इक्वलिटी में, हकूक के नाम पे वो नेकियों पे नज़र रखती थी। फिर कहती हैं हमें विरासत भी आदि मिलती है। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, ये जामेल बयान तफसीर है, उसमें मौजूद है ये रिवायत। इसी तरह इब्ने अभी हातिम में इब्ने अब्बास से एक रिवायत है, एक औरत रसूलुल्लाह के पास आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल मर्द को औरत से दुगना हिस्सा मिलता है और औरत की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है, तो हमारे अमल भी क्या इसी तरह हैं कि अगर औरत कोई नेकी करे तो इसे आधा सवाब है। इस पर रियायत उतरी कि ऐसा नहीं है, अल्लाह ने सबके लिए हिस्से रख दिए। और इससे एक और चीज़ भी पता चलती है कि किसी की नेमत आप देखें और आप साथ ही कह दें कि ये मुझे मिले, ये जो लफ्ज़ है ना ला तमन्नाउ, ये तमन्ना है, दुआ नहीं है। लिखें किसी के पास कोई दूसरी अच्छी चीज़ देखे ना, आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे भी ऐसे कर दे। किसी के बच्चे देखे बड़े मुअद्दब हैं आपके, अल्लाह मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाए, कर सकते हैं। तमन्ना में थोड़ी सी हसरत आ जाती है, ये नहीं करना चाहिए, या ये कहना कि उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ख्वाहिश है ठीक है, लेकिन तमन्ना ये हो जाए कि आप दूसरों से छीने तो ये हसद हो जाएगा, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। नबी सल्लम ने फरमाया कि दूसरे भाई के पास कोई चीज़ देखो तो उसकी तमन्ना ना करो, बल्कि ये कहो अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अल्लाहुम्मा आतिनी मिसलहु, ऐ अल्लाह मुझे भी रिस्क दे और अल्लाह मुझे भी इसी की तरह अता फरमा, यानी उससे बेनियाज होके अल्लाह से मांग लीजिए। हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना रश्क तो बस दो ही आदमियों पर हो सकता है, सोचें जिसके पास लैंड क्रूज़र हो और जिसका 1000 गज का घर हो डिफेंस में, नहीं, या जो अमेरिका में रहता हो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, नहीं। कौन से दो लोग हैं, गौर से सुनिएगा और फिर देखिए कि आज इंसानियत और ख़ास तौर पर हमारे अपने मुसलमान क्या इन चीज़ों की हसरत करते हैं। एक वो जिससे अल्लाह ने कुरान मजीद का इल्म दिया और वो इसके साथ रात की घड़ियों में खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहा, और दूसरा आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो इसे मुख्ताजों पर रात दिन खैरात करता रहा। बुखारी की रिवायत है, क्या दो दौलतें हैं, इल्म और माल, और दोनों अल्लाह के रास्तों में लग जाए। अल्लाह से दुआ करें मैं ऐसा बना दे, हमारे दिल खुल जाए अल्लाह के रास्तों में। और ये जो कहा गया कि तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी माफद्दलल्लाह भी बाद अकुम अला बाद, तो इससे दुनिया की सलाहियतें काबिलियतें माल असबाब हला सब कुछ मिल जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि ये जो बात है ना कि इसमें औरत और मर्द की बराबरी की जो बात है, आज वेस्ट ने इस आयत को बुनियाद बनाकर औरतों को खड़ा कर दिया, स्लोगन दिखा दिए इक्वलिटी के नाम पर, और ये कह दिया जी कि हम तो पीछे मर्दों से हो गए और हमें तो कुछ मिला ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। हालांकि आप देखिए कि कुरान पढ़ते हुए, ख़ास तौर पे क्या सूरत निसा पढ़ते हुए आपको एहसास नहीं हो रहा कि जितना अल्लाह ने औरतों के हकूक़ की प्रोटेक्शन रखी है उतनी तो शायद मर्दों की भी नहीं है। अल्लाह दोनों का है, मर्दों का भी औरतों का भी है। हम ये नहीं कह सकते औरतों को ज़्यादा दिया मर्दों को कुछ नहीं दिया, बस ये कह ले जो जिस काबिल था उसको वही दिया। इसके बरक्स आज विमेन राइट्स के नाम पे, विमेन लिब के नाम पे लिबरेशन और इसी तरह मुख्तलिफ एनजीओस जो स्लोगन देती हैं वो इंतहाई गैर फितरी बातें हैं। देखिए अल्लाह ने अगर मर्द को मर्द बनाया ना तो उसके अंदर फितरत में ये रखा है शुरू से। मसलन देखिए कि औरत से अल्लाह ने जो बुनियादी काम लेना है ना, वो बच्चों की तख्लीक का और बच्चों की तरबियत का, ऐसे ही है ना। मर्द से जो बुनियादी काम लेना है ना, वो सोसाइटी का बिल्डअप, कमाना, बाहर की दुनिया का बादशाह मर्द, घर की दुनिया की रानी औरत, ये फितरत में डाला हुआ है। मसलन अगर आप देखें कि पहले दौर में, आज तो मुझे कुछ इतना अंदाजा नहीं होता, ना मैंने कभी गौर से देखा है, लेकिन अक्सर आप देखें कि छोटी बच्चियां खेलती हैं ना, आप सामने एक गुड़िया रख दें और एक हथौड़ी रख दें और एक बच्ची बच्चा दोनों को बारी बारी भेजें, बच्ची किसको पकड़ेगी और बच्चा किसको पकड़ेगा? हथौड़ी को पकड़ेगा। अच्छा चले, गुड़िया ही रख दें, वो जो बच्ची है ना उस गुड़िया को पकड़ेगी ना, तो वो ऐसे पकड़ के उसको ऐसे गोद से लगाएगी, सीने से लगाएगी। और लड़के अक्सर गुड़िया पकड़ भी ले तो कैसे पकड़ते हैं? बालों से खींच के लेके आते हैं, या उसकी टांग पकड़ के घसीटते हुए ले जाते हैं। ये फितरत है। लोग कहते हैं नहीं जी, चूंकि उन्होंने अपनी माओ को ऐसे करते देखा होता है ऐसे, लेकिन आप देखिए कि फितरतन मर्द के अंदर सख्ती है, वो जड़पन है उसमें, वो रिक्कत नहीं है। औरत में सोज है, गुदाज है, तरबियत तो लेनी है अल्लाह ने। अब बच्ची छोटी जो है वो गुड़िया गुड़िया खेल रही है, उसी से वो माँ बनना सीख लेती है, उसी से घर चलाना सीख लेती है। मर्द को आप औरत बना दें, क्या बनेगा? आप कहते हैं औरत मर्द को बराबर कर दें, इसी नाम पे आपको कहते हैं औरतों को मर्दों वाले कपड़े पहनाए हैं, तो आप जरा एक मर्द को भी तो फिर औरत बनाए ना। आप कहते हैं औरत मर्दों वाले हाल हुलिये में दिखले बड़ी स्मार्ट लगती है, मर्द लगती है, खुश होंगे आप सब देख के। एक मर्द को भी तो इजाजत दीजिए ना, जरा मिनी स्कर्ट पहन के बाहर निकले, झुमके पहन के निकले, साड़ी बांध के निकले, कैसा लगेगा? देखिए अगर औरत मर्द बन सकती है और बनना चाहती है, तो फिर मर्द को भी तो हक दीजिए ना। ये सिर्फ शैतान ने फोहश और उरियानी को आम किया कि औरत को हर स्टैंड पे खड़ा कर दिया कि तुम भी मर्द के बराबर खड़े हो जाओ और विक्ट्री स्टैंड पे पाँव से पाँव मिला के रखो। अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए कि अल्लाह औरत की इज्जत चाहते हैं, इंसानियत का एहतराम है। और अल्लाह सुबहाना ताला ने औरतों को बगावत नहीं सिखाई। जब वेस्टर्न स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल का आप आपस में मुकाबला करते हैं ना, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो लिख लीजिए, बहुत फायदे की चीजें हैं। आप जिस दुनिया में बैठी हैं, आप जरा सा बाहर सोशल वर्क के नाम पे निकलिए, आपको बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे। इस्लाम तो औरतों को घर में बंद कर देता है, और यहाँ तो ये हकूक नहीं है, वो नहीं है। तो इस्लाम में औरत के हकूक और जदीद मगरबी ममालिक में औरत के हकूक का तकाबुल करते हैं पॉइंट्स की सूरत में। पहला फर्क देखिए, इस्लाम ने मर्द और औरत को कानून के नुक्ते नजर से बराबर हकूक दिए हैं। औरत अपना माल कमा सकती है, औरत का माल उसका अपना है, यानी कानूनी हक बराबर है। इसके बरक्स कानून की नजर में मर्द और औरत बराबर नहीं है। बाज़ कवानीन ऐसे हैं कि औरत अपनी जायदाद इस्तेमाल करते हुए शौहर की इजाजत के बगैर उसको बेच नहीं सकती, खरीद नहीं सकती। इस पे पूरी रिपोर्ट है, अभी मैं कोशिश करती हूँ जो आपसे शेयर कर सकूँ। यानी ये यूरोप और अमेरिका, कनाडा को अगर आप इनका थोड़ा सा पीछे ले जाए ना, आप 400 साल पीछे, ये सदी 19वीं सेंचुरी के करीब में, औरतों के नाम पे जायदाद नहीं थी हो सकती, प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर सकती थी। ये सिर्फ एक लोगों को प्रवोक करने के लिए आज इस्लाम का नाम लिया जाता है। फिर आप देखिए दूसरा फर्क है कि इस्लाम ने शहरी हकूक में मर्द और औरत को बराबर करार दिया है। शादीशुदा और गैर शादीशुदा में कोई फर्क नहीं है। शादी के बाद औरत का नाम वही रहता है जो पहले था बाप के नाम के साथ। शहरी हैसियत बरकरार रहती है, इसकी शख्सियत ख़त्म नहीं होती। इसके बरक्स वेस्टर्न सोसाइटी में क्या है, औरत शादी होते ही अपना नाम और अपने खानदान का नाम खोती है, लास्ट नेम जिसको आप कहते हैं, सर नेम कहते हैं, बाप का नाम उतर जाता है अमूमन। अगर आप शेखों से हैं तो आपका नाम शेख था पहले, तो शौहर के नाम के साथ खान है तो खान चला जाएगा आपके नाम के साथ। यानी औरत अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है, तो क्या बताइए, ये औरत की इज्जत हुई कि खराबी हुई? इस्लाम में कभी हजरत आयशा को किसी ने ये नहीं कहा कि आयशा पहले तो आयशा बिनते अबू बकर थी और शादी के बाद होगी आयशा मिसिज मोहम्मद। आपको कभी आयशा जौजा मोहम्मद का नाम नहीं दिखेगा। तो क्या ये औरत, इस्लाम ने औरत को उसका नाम बाकी रखना हक नहीं दिया? फिर तीसरी बात यह कि इस्लाम में औरत अपने मामलात खुद तय कर सकती है, हर फैसला, लेन देन, रहन का, खिबा, वसीयत, कोई इसको मजबूर नहीं कर सकता। जबकि वेस्टर्न स्टाइल में औरत अपने बास मामला खुद तय नहीं कर सकती। फिर इसी तरह से एक चौथा फर्क है कि औरत की जायदाद इसके शौहर की जायदाद से अलहदा है, खुद वो उसकी मालिक है। निकाह की वजह से शौहर उसकी जायदाद पे कब्जा नहीं कर सकता। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में आप देखिए कि औरत बाज़ औक़ात अपने मामलात को कैसे सेट नहीं करती। ये एक मिसाल दी हुई है एक रिपोर्ट की कि फ्रांस के सिविल कोड की दफा नंबर 17 में ये तय किया जाता है कि मर्द और औरत की मलकियत अलहदा होगी। इसके बावजूद वो अपनी जायदाद हिबा नहीं कर सकती, ना इसकी मलकियत मुंतकिल कर सकती है, ना रहन रख सकती है, सिवाय ये कि इसका शौहर किसी माहदे में इसके साथ शरीक हो या ये कि वो तहरीरी तौर पर इन अमूर में से किसी की इजाज़त दे। यानी ये फ्रांस का एक कानून लिखा हुआ है कि औरत अपनी चीज़ खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, हाँ अगर शौहर साथ इजाज़त दे दे तो कर सकती है। फिर इसी तरह पांचवा फर्क क्या है कि शौहर को कोई कानूनी इख्तियार नहीं होता कि वो बीवी की कोई चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर हासिल करे, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। आपके पास जो कुछ है वो पूरा आपका है। इसके बरक्स वेस्टर्न स्टाइल में औरत शौहर की इजाज़त के बगैर अपने माल से भी कुछ नहीं कर सकती, और औरत की हैसियत एक कह लीजिए कि इनडायरेक्टली कह लीजिए कि एक जर खरीद की होती है। कि बाज़ मामलात में जैसे मिस्टर और मिसेज हैं, आपने सुना होगा यहाँ भी कि घर लें तो हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे होता है, कौन रहेगा फिर उसके बगैर। मर्द अकेले बेच सकता है लेकिन औरत अकेले नहीं बेच सकती, तो वेस्ट में पाबंदियाँ ज़्यादा हैं। फिर इसी तरह देखिए कि इस्लाम ने औरत की कदर व मंजिलत में इजाफा किया, कमाई का उसके ऊपर बोझ नहीं डाला, उसको सुकून दिया। इसके बरक्स इस्लाम के मासिवा किसी निज़ाम ने औरत को मर्द के बराबर हकूक नहीं दिए, बल्कि औरतों को ऐसी ऐसी जगहों पर खड़ा कर दिया कि बेचारियाँ ना बाहर की रहती हैं ना घर की रहती हैं। तो फरमाए वस्सलुल्लाह मिन फ़ज़लिही, तुम अल्लाह से उसका फजल मांगो। अब ये फजल क्या है? नबी सल्लम ने फरमाया अल्लाह से इसका फजल मांगो क्योंकि अल्लाह को सवाल पसंद है, अल्लाह ताला सवाल को पसंद करता है, और सबसे ज्यादा फजीलत वाली इबादत बुराई के मिटाए जाने का इंतजार है। ये तिरमिजी और इब्ने मरदविया की रिवायत है। ये बात समझ आई है? सबसे बड़ी फजीलत वाली इबादत क्या है कि बुराई के मिटाए जाने का इंतजार। यानी मेरी आपकी ख्वाहिश, कोशिश, नीयत, इरादा ये होना चाहिए कि दुनिया से बुराइयां मिट जाएं, हमारे जरिए से कह ले। फिर इसी तरह इस एक आयत से ये भी पता चलता है कि अल्लाह के फजल को तलाश करना यानी दुनिया की दौलत मांगना ये भी जायज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि जो अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होते हैं। अल्लाह ताला को मांगने वाले लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें आजिज़ी होती है ना। इसी तरह आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को महबूब है ये कि उससे उसका फजल मांगो। अल्लाह को वो बंदा बहुत प्यारा लगता है जो बुराई मिटाने को महबूब रखता हो। अल्लाह हमें ये आदत डाल दे और हम अल्लाह के महबूब बन जाएं। इन्नल्लाह कान बिकुल्ली शैइन अलीम, जो कर रहे हो जहाँ जितना कर रहे हो इसका अल्लाह को खूब पता है। और आखिर में फिर इसी मजमून की इस अगली आयत में वली कुल्लिन जालना मवाली मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक्रबून, और हर एक के लिए हमने वारिस बनाए हैं। कौन से? मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक्रबून, जो भी वालदेन और रिश्तेदार छोड़ दें। देखिए कानून वरासत की अहमियत के पीछे हमने इतनी डिटेल से आयतें पढ़ी, अब आखिर में एक मरतबा फिर इसका जिक्र फरमाया। वल्लज़ी नाक़दत अईमानुकुम, और जिनके साथ तुम्हारे अहदो पैमान हो चुके हैं। फ़ातूहुम नसीबहुम, तो इनको इनका हिस्सा दे दो। एक नया मसला उस सोसाइटी में पैदा हो रहा था, उसका जिक्र है इस आयत में, वो समझ लीजिएगा। ये था कि जिन लोगों के साथ दोस्ती और भाईचारे थे ना लोगों के पहले इस्लाम से, अब क्या हुआ कि मवाखाते मदीना का मामला पेश आया। मदीना में जाने के बाद एक अंसारी और महाजिर को जब भाई बना दिया गया ना, तो ये सवाल उठा लोगों में कि क्या विरासत में भी हिस्सा है? जिंदगी में तो अब हमारे ये भाई बन गए हैं, तो क्या हमारे माल में भी होगा? तो इस आयत में फरमाया कि नहीं, विरासत तो उसी कायदे के मुताबिक होगी जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी। इसी से फिर मुंह बोले दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहनों, इनकी भी हदबंदी समझ आ जाती है। क्या मतलब है? कि जिन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती और भाईचारे, अहदों पैमान वगैरह हैं, जो मुंह बोले बेटे भाई, उनका विरासत में हिस्सा नहीं है। अलबत्त अपनी जिंदगी में इनके साथ जो भी तुम अच्छा मामला करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। विरासत में से भी कुछ हिस्सा वसीयत के तौर पे देना चाहो तो दे दो, लेकिन इतना नहीं कि वारिसों के लिए कुछ पीछे बचे ही ना। और इन अल्लाह का नाला कुल्ली शैइन शहीदा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। क्या मतलब? कि तुम्हें जो कुछ कहा गया है इसको मान जाओ, और अल्लाह ताला को पता है कि उसने क्या हुक्म दिया। इस आयत में ये जुलूस मवाली आया ना, इसको थोड़ा सा समझिए। उर्दू में आप लफ्ज़ सुनते हैं मौला, चले मौलाना तो समझते होंगे ना। अरबी जुबान में ये लफ्ज़ यानी वली से ये निकला, इसके रूट में मीम नहीं आती, ये जहन में रखिएगा, गलती ना खाएं। वाली वली वही लफ्ज़ है इधर इसमें, कि मवाली से यहाँ क्या मुराद है, ये आपका क्वेश्चन है तफसीर में। तो मवाली से यहाँ मुराद तो वारिस है, असबा, यानी वो वारिस मुराद हैं जिनका कुरान पाक में कोई हिस्सा मुतय्यन नहीं है, और जब करीब के रिश्तेदार हों तो इनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब करीब के रिश्तेदार ना हो तो फिर मिलता है, ज़विल फ़रूज़ ना होने की सूरत में मिलता है। जैसे पीछे आपको समझाया था कि औलाद या बाप हो तो भाई बहनों को नहीं मिलता ना, इसी तरह फिर चचा फुफ्फो उनका जिक्र होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आयते हैं ना, ये इंटरफेस है, अभी अहकामात चल रहे थे आ रहे थे, तो उसी में ये यहाँ लफ्ज़ मवाली जो आ गया। मवाली का लफ्ज़ वली से किसी के करीबी और नज़दीक होने को कहते हैं। करीब होने के एतबार से लफ्ज़ विलायत का दूसरे के साथ जुड़ जाता है आपके अंदर, और ख़ास तौर पे ये जब मवाली की सूरत में आता है ना, तो चचा के बेटे को भी मवाली कहते हैं। इसी तरह जो किसी को आज़ाद कराए, जैसे हज़रत अबू बकर ने हज़रत बोलिए बिलाल को आज़ाद कराया ना, तो अबू बकर और बिलाल के बीच में वलायत का ताल्लुक बन गया, यानी मौला कह सकते हैं आप, हज़रत अबू बकर के साथी थे या अबू बकर उनके मौला बने। ये जो हमारे कल्चर में लफ्ज़ मौलाना बोला जाता है वो भी यही है, मौलाना, ना मैंने हम हमारे, मौला वाली से मुराद ये है कि वो हमारे बड़े हैं, सरदार को भी कहते हैं, राहबर को भी कहते हैं, रहनुमा को भी कहते हैं। यहाँ इसे मुराद बेसिकली वरासत ही के नाते से है। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि हिजरत के बाद मुहाजर अंसारी का वारस हुआ करता था, रिश्तेदार नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इनमें भाईचारा करवा दिया था। तो आप बस इसके लिए इतना कुछ समझ लीजिए कि इस्लाम ने हर इशू पे बात की है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मवाली से मुराद वारिस हैं, बुखारी की ये रिवायत है, कि अल्लाह ताला ने हक वालों को उनका हक दे दिया है, मुंह बोले रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन इसके बाद जो भी चीज़ अल्लाह ने कही है तुम उसको मान जाओ। तो यहाँ पे ये बात पूरी हुई कि अल्लाह ने हक वालों को हक दे दिया है, तुम उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं कर सकते इधर उधर की। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें हक बात को समझने की तौफीक दे। आप सच बताएं मुझे कि अगर हम कुरान की इस क्लास में इस वक्त ना बैठे होते तो ये जितने इश्यूज आज अभी हमारे सामने आए हैं, क्या हम इसके ऊपर अमूमन दरूस सुनते, लेक्चर्स होते, नहीं होते? तो तरतीब से कुरान सुनने में यही फ़ायदा है। तो आज के सबक को हम इसी पे रोकते हैं, ठीक है? चलिए, जज़ाकअल्लाह खैर, आपकी क्लास का भी वक्त पूरा हुआ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला इल्ला अंता, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً